ओम शांति। अच्छा, आप सभी इंदौर जोन से आराम से यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, सभी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाथ ऊंचा करो किसी को। सब खुश है? अच्छा, जो कौन खुश नहीं है? एक भी खुश नहीं। यहाँ पे बाबा के प्रकंपन है, तपस्या के प्रकंपन है, और जो भी बाहर से आता है एकदम मन उसका खुश हो जाता है। अब अपने आप से प्रश्न पूछो, देखने के लिए आए को, घूमने के लिए आए को, कि विशेष आगे बढ़ने के लिए आए को, कि घूमने के लिए भी आए को और आगे बढ़ने के लिए भी आए को। हाथ ऊंचा करो जो अपनी उन्नति के लिए आए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। यहाँ का एक एक पल बहुत ही सुंदर है और एक एक पल से हमें कमाई करना है। हमारे बाप दादा, हमारी प्यारी दादियाँ, विशेष सीनियर भाई और बहनों ने कितना प्रेरणा देकर के यहाँ पे वातावरण को, तपस्या का वातावरण बनाया है। इस वातावरण में कुछ भी संकल्पों का आप बीज डालेंगे तो अवश्य ही वो फलीभूत होगा। तो इसलिए आप अपने सपने को, आप अपने श्रेष्ठ जो आपका विचार है उसको फलीभूत करने के लिए यहाँ पर आए हो। अब उसके लिए हमें एनर्जी इकट्ठी करना है। शिव बाबा भी यही चाहते हैं, ब्रह्मा बाप भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मेरा एक एक बच्चा सर्व शक्तियों से संपन्न बने, सर्व शक्तियों का अधिकारी बने। तो आप ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना चाहते हो ना? बाबा के वर्षे का अधिकारी हम सभी को बनना है। बाबा की दृष्टि है हमारे ऊपर, कौन कौन कितना सफलता का सितारा बनता है, कौन कौन बाबा के वर्षे से अपने जीवन को संपन्न बनाता है। हम सभी ये संकल्प करें कि हम सब यहाँ आए हैं और हमें संपन्न बनना है। हर एक की इच्छा तो होती है संपन्न बनने की, सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी संपन्नता के अंदर कुछ न कुछ कमी आ जाती है। कभी उदासी आ जाती है, कभी कहीं मन उलझ जाता है। तो हमारी जो वर्षा प्राप्ति की जो अनुभूति, जो निरंतर खुशी, निरंतर बाबा के साथ हमारा मिलन, निरंतर बरसात वरदानों की हम जो अपने ऊपर चाहते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, कभी कभी ब्रेक लग जाती है। तब निरंतर हमारी अवस्था बनी रहे और उसमें अंतर ना आवे, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को दो बातें ध्यान में देने के लिए बोला है। वो दो बातें कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें संपन्नता के रास्ते पर ले जाती है। तो वो दो बातें हैं, एक तो हम अपनी स्मृति को यथार्थ बनावे, और दूसरा हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनावे। व्रती भी पावरफुल हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो और पुण्य का खाता भी हमारा जमा होता रहे। तो इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं व्रती को पावरफुल बनाना है तो एक तो कनेक्शन बाबा के साथ निरंतर रहे। पहली शर्त क्या है? कनेक्शन बाबा के साथ हमारा मजबूत रहे, कभी टूटे कभी लगे है, कभी जोर से लगे कभी धीरे से लगे, कभी बड़े मुश्किलात से लगे है, ऊंची नीची अवस्था होती रहती है। तो पहली शर्त है बाबा की कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ निरंतर जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए करेक्शन, दोनों उपदेश श्री बाबा ने क राशि पे दिए, एक कनेक्शन एक करेक्शन। तो कनेक्शन भी हमारा रहे पूरा पूरा, करेक्ट भी करते रहे, हम अपने आप को सुधारते भी रहे। तो अपने मन की तरफ ध्यान खिंचवाना है कि मेरे मन के अंदर क्या क्या संकल्प उठ रहे थे, उन संकल्पों को करेक्ट करते जाए। संकल्प उठे बगैर तो मन रहता ही नहीं है, मन में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी उल्टा भी और कभी सीधा भी। तो इसलिए मन की तरफ ध्यान खिंचवाना है कि मेरा संकल्प पॉजिटिव 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 चलता रहे। किसी के अवगुणों पर हमें दृष्टि न जाए। तो एक तो हमें संकल्पों को करेक्ट करना है, दूसरा हमें अपने कर्मों को भी करेक्ट करते जाना है। अगर ये दोनों बातें हमसे होती रहेगी तो हम संपन्नता की ओर बढ़ते जाएंगे और निरंतर के अंदर है? हमारा अंतर जो पड़ गया है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हम सभी यही चाहते हैं कि हम सब एक रस स्थिति में चलते रहे। तब भी हम चाहते भी हैं, हर एक की इच्छाएं चाहते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, कुछ हिसाब से चलते भी हैं, लेकिन फिर भी माया पंजा कहीं न कहीं से मार ही देती है हाँ? और मन हमारा उदास करके नीचे गिरा देती है। तो ऐसे समय पे बाबा क्या कहता है कि बच्चे आराम पसंदी बन गए हैं हाँ? मेहनत कम करते हैं। कौन सी मेहनत कम करते हैं? बाबा कोई भक्ति मार्ग जैसी हमसे शारीरिक मेहनत नहीं चाहता। जैसे भक्ति मार्ग में कितना मेहनत करते हैं, कितना घंटा हाँ? पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कांटों पे खड़े हो जाते हैं, तुलसी का एक पत्ता खा करके हैं पूरा दिन गुजारते हैं हैं, और हैं जैसे पानी के अंदर ही तपस्या करते हैं, चारों तरफ आग जला के तपस्या करते हैं। तो भक्ति मार्ग के अंदर कितना हम अपने आप को कष्ट देते हैं। यहाँ पे बाबा ऐसी मेहनत नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी कहता है तुम्हारे अंदर ज्ञान की बातें जागृत रहे, और उसको फिर तुम बच्चे जैसा समय हो राइट टाइम पे राइट बातों का उपयोग करें। तो क्या हम इसमें सफल हो रहे हैं? चेक करो, हम आराम पसंदी है या प्रभु पसंद है, क्या बनना चाहेंगे? प्रभु पसंद बनना चाहेंगे, सभी प्रभु पसंद बनना चाहेंगे, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हम सब प्रभु के दिल में बैठना चाहते हैं, प्रभु पसंद बनना चाहते थे। तो जो प्रभु पसंद बनना चाहेगा तो सबसे पहले उसको अपनी आरामी का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो अपनी बाप समान स्थिति बना सकता है। और बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे देखो हम भक्त लोग तुम्हारी अवस्था का गायन कर रहे हैं। कितना गायन कर रहे हैं वो लोग, भक्त लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमारे योगी ऐसे होंगे, हमारे तपस्वी ऐसे होंगे, उनका हम साक्षात्कार करेंगे। तो वो देखना चाहते हैं, वो गायन करते हैं, हमारी अवस्था का वो महिमा करते हैं। लेकिन हम योगी, हम ब्राह्मण अपने आप से भूले हुए, हम कहलाने को तो क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी, ब्राह्मण यानी जो सदा की ब्रह्म में रमण करता हो। अब ब्रह्म लोग तो यहां नहीं, संसार में नहीं, वो तो ऊपर। तो क्या हमारी बुद्धि सदा ऊपर की ओर रमण करती है? हैं, तो ब्राह्मणों का बड़ा गायन। ब्राह्मण क्या करते, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पवित्रता का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म तत्व में अपनी बुद्धि का रमण कराते हैं। तो ब्राह्मणों का विशेष महत्व है। तो हम कहलाते ब्राह्मण हैं, लेकिन हम स्वयं की अपनी अवस्था को जैसे भूले हुए। तो भक्त लोग शास्त्रों में भी गायन गाते हैं, और गीता में भी लिखा हुआ है, हमारी अवस्था का गायन गीता में भी किया हुआ है। किन शब्दों में किया हुआ है? तो कहते हैं, नष्टो मोहा प्रति लब्धा। जब हमारा मोहा नष्ट हो जाएगा तो हमारी स्मृतियां जागृत हो जाएगी। तो अब अपने को चेक करना है, क्या हमारा मोह नष्ट हो गया है? कहां कहां मोह अटका हुआ तो नहीं, कितने परसेंटेज में अटका है? अपनी देह में मेरा मोह तो नहीं है, कोई रिश्तेदारों में तो मेरा मोह नहीं है, बच्चे में, बहू में, कुछ नहीं। तो पोता तो सबसे प्यारा लगता है, पोते पोतियां तो सबसे मीठी मीठी बातें करते हैं, मन बहलाते हैं, वो तो और भी प्यारे लगते हैं। तो देखना है कि कहीं प्रकृति के अंदर वस्तु वैभव कहां हमारा मोह अटका हुआ तो नहीं है। इसे नष्टो मोहा मृति लब्धा। अगर मोह को नष्ट करेंगे तो की स्मृतियां जागृत होगी। तो ऐसी जागृति जिसका भक्त लोग वर्णन कर रहे हैं, और यहां ब्राह्मण भूले हुए गए। जबकि सोचो, जिस दिन से आपका आध्यात्मिक जन्म का पहला दिन था, जिस दिन से आप सेंटर पे गए, पहले दिन का आप सभी ने कोर्स लिया, तो पहले दिन ही आपको क्या सिखाया गया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर से न्यारे हो, आप आत्मा हो। तो नष्टो मोहा, शरीर से मोह निकालना है, ये पहले दिन से आपको आखिरी दिन का क्वेश्चन मिल गया। आपके जीवन में आखिरी पेपर कौन सा आने वाला है, वो पेपर आउट हो गया। दुनिया में पेपर आउट हो जाता है तो हाहाकार मच जाती है कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो जानबूझ करके शिव बाबा पहले दिन से ही पेपर आउट कर देता है, हैं, और कह देता यही परीक्षा आएगी, तुम्हारी परीक्षा इसी सब्जेक्ट में आएगी, हैं? तो क्या हम पास हो जाएंगे? अब तो पेपर आउट हो गया, फिर 108 में आ जाना चाहिए, हैं? और फिर रोज इतने सालों से बाबा मुरली चलाते हैं, हैं? 5-6 बार 7 बार मुरली के अंदर भी आ जाता है, बच्चे देखी अभिमानी भव, देखी अभिमानी बनो। तो रोज हम, जब से हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, तब से बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा है, हैं? आत्मा अभिमानी बनने की, नस्तो मोहा बनने की। हाँ, जितना हम अपनी स्मृतियों को जागृत करते जाएंगे, उतना उतना हमारा जो बचा हुआ मोह है वो भी नष्ट होता जाएगा। तो भक्त लोग जिसकी उपासना करते हैं, तो अब तो सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाना चाहिए। इतने दिन हमने यह सब पाठ पढ़ा है, तो बाबा कहता है, बच्चे सब पास होने वाले हो ना, अब तो सब पास होने वाले हो ना, हाँ? फिर कहता है, अच्छा, ये पास शब्द को एक नए अर्थ में यूज करो। पास जो शब्द दिया है, तो बाबा ने इसको नए अर्थ में यूज करने का बोला। एक तो सब जानते हैं, बीती सो बीती, जो बात बीत गई है उसको पास कर लो, बीती को चितो नहीं, हाँ, बीती बात को लेकर के बैठो नहीं, बीती बात की गांठ नहीं बांधो, बीती बात के कारण डिप्रेशन में मत आओ। तो कोई भी बीती बात को क्या करना है, भुलाना है। तो बीती को चितो नहीं की। दूसरा कहता है, पास, हम बच्चों को भगवान के पास रहना है। भक्ति मार्ग में क्या कहते, उपवास। उपवास का भी अर्थ क्या होता है, उन्होंने तो भोजन का उपवास कर डाला, व्रत कर डाला, लेकिन उपवास मतलब परमात्मा के पास रहना। तो हमें पास का दूसरा मतलब क्या है, परमात्मा के पास रहना है। कैसे पास रहना है, ऐसे नहीं कि बाबा की फोटो यहाँ लगा के रखो, बेंच छाती से लगा के रखो, हम तो पास ही है, शिव बाबा ने पास है, देखो, ये नहीं। बुद्धि हमारी शिव बाबा के पास है, देखना है, बार बार अपनी बुद्धि को टच करते जाना है, हम शिव बाबा के पास है, ये चेकिंग करना है। और तीसरा पास का मतलब है, हमें कोई भी सिचुएशन से पास हो जाना है, यानी नंबर 1 स्कॉलरशिप लेना है। तो जब हम पास शब्द को याद रखेंगे, तो माया जीत, जगत जीत बनते चले जाएंगे, हैं? बाबा कहते, बच्चे भगवान के पास रहने में भय तो नहीं लगता है, हैं? भगवान निमंत्रण दे रहा है, श्री बाबा बच्चों को निमंत्रण दे रहा है। क्या निमंत्रण दे रहा है, कि बच्चे आओ मेरे पास रहो, हाँ, मेरे चरित्र का अनुभव कराऊंगा, तो निमंत्रण दे रहा हूं कि मेरे पास रहो, हाँ, अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर प्रेसिडेंट आपको निमंत्रण दे कि मेरे साथ रहो, हाँ, मेरे साथ रहो तुम, अच्छा कोई फिल्मी एक्टर, प्रसिद्ध एक्टर, कोई आपको निमंत्रण दे कि आज मेरे साथ रहना, सारा दिन मेरे साथ रहना है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें तो डर लगता है, वो भय से भी दूर करें, साहस भरे आपके अंदर, हौसला भरे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसा करूंगा, नहीं ऐसा आपको पसंद नहीं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, तब तो देरी नहीं करेंगे ना, हम उसके पास रहेंगे ना। तो शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे मेरा निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं करते हो, मैं निमंत्रण देता हूं हाँ? और ये निमंत्रण कैसा है, निमंत्रण तो जिंदगी में बहुत मिले आपको हैं, कभी शादी के निमंत्रण, कभी किसी के एनिवर्सरी के निमंत्रण, कभी किसी की बर्थडे के निमंत्रण, निमंत्रण तो बहुत मिले हैं जिंदगी में। देखिए ये निमंत्रण कैसा है, कैसा है ये निमंत्रण हाँ, कैसा है ये निमंत्रण, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये निमंत्रण का भी नाम क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण मिला तुरंत स्वीकार कर लो। तो हमको भगवान ने निमंत्रण दिया है, क्या निमंत्रण दिया है, बच्चे मेरे पास रहो। तो भगवान का निमंत्रण आया है, हमें शिव बाबा के पास रहना है। जब शिव बाबा के पास रहेंगे तो क्या होगा, माया सदा के लिए विदाई ले लेगी, लेगी कि नहीं लेगी, सदा के लिए माया विदाई हो जाएगी हैं? तो अब देखो रावण को जब मारना है, तो रावण को मारना है तो रावण के मरने के भी तीन स्टेज होती है, एक तो मूर्छित करना, दूसरा मार डालना और तीसरा उसको जला देना और चौथा भी माने तो उसको राख को बहा भी देना। तब हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, माया को मूर्छित किया है ना, माया को मूर्छित किया है, माया आधी मरी है, अभी पूरी नहीं मरी, अभी आधी मरी है, 50% मरी है, मूर्छित किया है या किसी ने पूरा मार डाला, आप तो वो सिर उठा के देख ही नहीं सकती, सामना कर ही नहीं सकती, पूरा उसको अच्छी तरह से मार डाला, मार डाला यानी हमारी अवस्था अप डाउन नहीं होगी है, माया को हमने पूरी तरह से मार डाला। अच्छा मार डाला पर लाश तो भी वहीं पड़ी है ना, पूरी क्रिया कर्म तो नहीं किया ना, है ना, तो क्या करना है, उसको जला भी देना है, तो इसलिए लास्ट स्टेज उसकी जला देना और जलाने के बाद उसकी राख भी गंगा में स्वाहा कर देना। तो इस तरीके से है माया को हमें मूर्छित करना है, है लेकिन पूरा ही जला करके मार डालना है, तभी हम जगत जीत माया जीत बन सकेंगे। तो हम कहलाते हैं अपने आप को महावीर, तो महावीर का काम क्या होता, महावीर योद्धा है ना, तो युद्ध के अंदर उसके दिल में क्या होता है, जो युद्ध के अंदर प्रवीण होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ही बात रहती है, एक तो वो हाँ वैभव से व्यक्तियों से दूर हो जाता है ना, व्यक्ति आकर्षित करता है उसको और ना कोई वैभव उसको आकर्षित करते है, दोनों बातों से वो दूर हो जाता है ना, और उसके दिमाग के अंदर क्या होता है, एक ही बात होती है ना, युद्ध विजय युद्ध विजय युद्ध विजय, मरना है मारना है। तो इस तरीके से वो एक ही बात, पहला तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो ऐसा पक्का निश्चय, एक बल और एक भरोसा। तो हम सभी एक बल और एक भरोसा, भरोसा भी एक का, एक बल और एक भरोसा। तो भरोसा और विश्वास में क्या अंतर है, एक रहता है भरोसा और एक रहता है विश्वास, तो विश्वास और भरोसे में क्या अंतर है। कई बार देखा होगा छोटे मोटे मेले होते ना, हैं, गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आज भी मेले होते हैं और नट लोग क्या है वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं, हैं? कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्टैंड लगा करके दूर दूर ऐसे रस्सी बांध देते और इसके अंदर नट अपना बताता है, कारोबार बताता है और वो बिना आधार के उसके ऊपर चलता है और लोग जब तमाशा देखते हैं तो बहुत तालियां बजाते हैं, फिर पैसा फेंकते हैं, बड़े खुश होते हैं कि देखो जो हम नहीं कर सकते ये नट ने कितना सुंदर करके बता दिया, ऐसा वंडरफुल करके दिखा दिया जो हम नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम आप कहो, नट कहता है कि आप कहो तो मैं कोई है अगर इस भीड़ में तो आप कहो तो मैं उसको कंधे पे लेके भी है इस रस्सी के ऊपर चल सकता हूँ। नट को अपने पर पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है कि मैं तो ले जाऊंगा, मैं तो ऐसे तरह चल के वापस वह आ जाऊंगा, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को कहता है तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, है तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ तो मैं तुमको इस पार से उस पार ले जाऊंगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या भरोसा आ रहा है, क्या पता इतनी ऊपर से मैं गिर जाऊंगा तो अगर डर के मारे अनबैलेंस हो गया तो है, तो भरोसा तो नहीं है ना, भरोसा तो नहीं है ना, उसको विश्वास है कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन भरोसा करने वाले को भरोसा नहीं। तो भगवान क्या कहता है, एक बल एक भरोसा, कैसा भरोसा रखो, एक बल और एक भरोसा। मैं एक बार की बात सुनाती हूँ आपको, भरोसा भी क्या होता है ना, आपने कारगिल लड़ाई का नाम सुना होगा, कितनी वहां पे बर्फ पड़ रही थी और उस समय सैनिक लोग कितना लड़ रहे थे हाँ, और कितनी जफाकशी का वातावरण था हुँ? तो एक सैनिक बहुत ऊंचाई पर जहां पे कितना माइनस 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड जहां का वातावरण था, बर्फ की तह के तह जमी हुई थी, रात का टाइम था हाँ? और ऐसा बर्फ वहां से स्खलन हुआ है और वो बर्फ के साथ फिसलता फिसलता एक जगह अटक गया, अटक गया। उसके कमर के अंदर एक रस्सी बंधी हुई थी और खूंटा भी डला हुआ था हाँ, उसने कम से कम वो खूंटा छोड़ दिया था हाँ, और खूंटा कहीं जाकर के अटक गया और वो लटक गया और अब सोच रहा है कि पूरी रात मुझे गुजारनी इस बर्फ के अंदर लटकते लटकते, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, मेरे साथी छूट गए, मैं अकेला पड़ गया, आवाज इस पहाड़ों के अंदर कहीं जा नहीं सकती है और बर्फ की रात है हैं? अब मेरा क्या होगा हैं? कई बार थोड़ा जब तक आवाज निकली हैं, वो इधर उधर आवाज फैलाता रहा लेकिन उसके साथी किसी ने नहीं सुना हैं? और वो भगवान को याद कर रहे, प्रभु गया अब तो जिंदगी मेरी गई। भगवान कहता है छोड़ दे रस्सी, मत पकड़, छोड़ दे रस्सी, काट दे, तेरे कमर के अंदर छुरा भी पड़ा है, चाकू पड़ा है, उसे रस्सी काट दे, फ्री हो जा। वो कहते इसे खाई में गिर जाऊंगा, अंधेरी रात है, खाई में गिर जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, डरते डरते रस्सी पकड़े हुए हैं, लटका हुआ है, बार बार उसके मन में प्रेरणा आ रही है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो। प्रभु कहते रस्सी काट दे, तो कैसे काटू रस्सी, कैसे काटू, नीचे खाई है, बर्फीली रात से रस्सी कैसे काटू। सोचते 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 सवेरे जब हुआ तो बर्फ बन गया और धरती कितनी थी, केवल 2 फुट नीचे थी, क्योंकि भरोसा नहीं था उसको, भगवान कह तो रहा था लेकिन उसको भरोसा नहीं था हैं? और वो वहां पर ही बर्फ बन गया। तो भगवान भी क्या कहता है कि एक बल एक भरोसा मेरे पे रखो तो तुम सदा के लिए बच जाओगे हैं और मेरे बन जाओगे। तो हम बच्चों को इतना दिल से, अब समय क्या आ गया है, बाबा का इशारा पकड़ने का समय आ गया। बाबा ने देखो, ब्रह्मा बाबा ने 33 साल साकार रूप में सेवा दी, 52-53 साल हो रहे हैं बाबा को कि बाबा वतन से हम बच्चों को सेवा दे रहे हैं। बाबा है प्रकाश की काया में बैठ करके है विश्व संभाल रहा है, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को प्रेरणा दे रहा है, हैं अभी तक अव्यक्त पाठ बाबा का मुल्लार दादी के अंदर पाठ चला हैं, कितने साल चला, 52-53 साल चला, और अब बाबा ऊपर से इशारों की भाषा समझा रहा है। तो अब देखो क्या हम सब इतने महीन बन गए हैं कि भगवान का इशारा पकड़ सके, कि अभी हमारी स्थूल बुद्धि है, भगवान का इशारा पकड़ने के लिए क्या चाहिए, जैसे सुई का जो रहता है ना ऊपर का टॉप जिसमें अपन धागा डालते हैं, कितना छोटा सा छेद होता है ना, कुछ छोटे से छेद में, जैसे बाइबल में कहा है कि स्वर्ग में जाना इतना कठिन है कि उस छोटे से छेद में से ऊंट निकालना, छोटे से छेद में से ऊंट को निकालना, तो छोटे से छेद में से ऊंट कब निकलेगा, जब हमारी बुद्धि महीन हो जाएगी, हमें अपनी बुद्धि को इतना महीन बनाना है कि अब इशारों से काम चल रहा है, हम भगवान का इशारा कैच कर सके। अगर भगवान का इशारा कैच कर लिया सफलता मिलेगी, और सफलता में एनर्जी है, एनर्जी मिलेगी, और अगर भगवान का इशारा कैच नहीं किया, डर गए हैं, तो नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। तो इसलिए जैसे जैसे समय महीन होता जा रहा है, साइंस देखो, साइंस भी तो महीन होती जा रही है, पहले जो साधन इतने बड़े बड़े होते थे हैं, पहले वो जो रिकॉर्ड बजता था ना, ग्रामोफोन आता था, उसके अंदर पहिया चलाते थे, और पहिया चलाते थे जब वो रिकॉर्ड प्ले होता था उसके, और वो कांटा उसके ऊपर यूं डालते थे हैं, और वो घूमता रहता था रिकॉर्ड, और उसके अंदर ट्यूनिंग बजती रहती थी, गाना बजता रहता था। और अब देखो तो छोटे छोटे मोबाइल, उसके अंदर गाना भी बजा लो, टेलीफोन भी कर लो, पिक्चर भी देख लो, सब कुछ एक छोटे से साधन के अंदर आ गया है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे साइंस महीन होती जा रही है, ऐसे ऐसे अध्यात्म भी क्या होता जा रहा है, महीन से महीन, महीन से महीन, महीन होता जा रहा है। तो क्या विचार है, हमें हाथी बुद्धि बन के रहना है कि हमें महीन बुद्धि बनना है ना? तो हमें इतना महीन बनना है कि हम सुई की उस नोक में से भी निकल कर बाहर आ जाए, यानी हम इतना जल्दी मोल्ड हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए अपने आप को फंसाने की बजाय, अपने आप को उलझाने की बजाय, एक ऐसी लाइन निकाले उसका भी भला हो, हमारा भी भला हो, हाँ? तो ऐसी ट्रिक निकालनी है ना? और साथ में शिव बाबा ये भी कहता है, तुम बच्चों को खुश रहना है, ऐसे नहीं कि जफा कशी में हम ही डिप्रेशन में आ गए, ये खुश रहना है। हमने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में तो नहीं दिया है, वो ऐसा करे तो मैं खुश हूं, हाँ वो मेरे मन के माफिक चले तो मैं खुश हूं। बाबा ने कहा कि संसार क्या है, सागर है। सागर में क्या होती, ऊंची नीची लहरें आती रहती, कभी ऊंची आई कभी नीची आई, कभी क्या आया कभी क्या आया। सागर को कह नहीं सकते कि नहीं हम तो ऐसी ही लहरों में नाच सकते, इसे तो ऐसी ऐसी ही एक समान लहरें है डालना, कभी भी सागर है एक समान लहरें नहीं डालता है। ऊंची नीची हर तरह की लहरें आती है, इसी तरह से ये संसार सागर है और इस सागर के अंदर भी सुख दुख चिंता हर तरह की खुशी कभी कैसी लहर आती रहती है और इन लहरों को झेलते हुए भी हमें खुश रहना है। जब हम बाबा के पास हैं, बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, अनुभव कराते, तो मानो आपको कोई योग के अंदर एक सेकंड कुछ अनुभव हुआ, अनुभव कितने साल तक आपकी सर्विस करता है सोचो। एक अनुभव हो गया, किसी को परम धाम का अनुभव हो गया, मानो किसी को अलौकिक शांति का अनुभव हो गया है, तो ये अनुभव सालों साल काम करता है, मतलब सेवा करता है, हमें कई डिप्रेशन से निकाल देता है। तो बाबा के एक सेकंड के अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तो इन सारी जो दौलत बाबा से मिली हुई है, खजाने बाबा से मिले हुए हैं, इन सब खजानों को हमें क्या करना है, इकट्ठा करते रहना है। और जो हमारे संबंध जहां पे हमारी आत्मा फंसी हुई थी, तो उन संबंधों को जितने भी संबंध है उसको अलौकिक बनाते जाना है। जैसे युद्ध के मैदान में जो योद्धा रहता है वो व्यक्ति और वैभव से दूर रहता है, तो इसी तरह से हम व्यक्ति के साथ तो रहेंगे लेकिन साथ रहते हुए भी संबंधों को अलौकिक बनाते जाना है। आप अगर थोड़ा सोचेंगे कि मानो एक माँ है तो कितना एक सेकंड के अंदर वो क्या करती है संबंध ऑटोमेटिक, कहना नहीं पड़ता, मशीनरी ऑटोमेटिक चलती, ऑटोमेटिक ही उसका संबंध चेंज होता है। बेटा आया उसके सामने बेटा आया है उसका संबंध वैसा हो जाएगा, वो वैसी बात करी। उसके सामने उसका भाई आया, एक सेकंड में संबंध चेंज हो गया, वो वैसी बात करे। उसके सामने उसके पिताजी आ गए, एक सेकंड में वो वैसी बात करेंगे। उसके सामने उसका ससुर आ गया, एक सेकंड में उसका संबंध चेंज हो जाएगा। हम भी जब सेकंड सेकंड बाबा को अपने सामने जब लाते रहेंगे हैं, तो हमारे ऊपर भी जो संसार के संबंधों की जो जो परछाइयां पड़ गई है, जो जो धूल और गर्तें पड़ गई है, हैं? वो सारी क्या होती जाएगी, पोंछी लगती जाएगी। सेकंड सेकंड बाबा को भी सामने लेते जाना है और अपने संबंधों की सफाई करते जाना है। संबंध तो निभाना है, जिस संबंध के बीच में बैठे छोड़ करके सन्यासी तो नहीं कि वे घर बार छोड़ करके चले जाएंगे, रहना भी घर में चलना भी घर में है, हाँ वही स्थान पर रहना है, लेकिन उसी स्थान में रहते हुए अलौकिक व्यवहार करना बाबा हम बच्चों को सिखा रहे थे। तो रिलेशन के अंदर भी कनेक्शन करते जाना है, कनेक्शन भी रहना रखना है और करेक्शन भी करते जाना है। एक एक चीजों के अंदर जब हम करेक्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे करेक्शन करते जाएंगे धीरे धीरे हमारी मंजिल संपूर्णता की ओर बढ़ती जाएगी। जीवन में रोड़े अनेक प्रकार के आएंगे, संपन्नता के रास्ते के अंदर बहुत तरह के बैरियर पड़े हुए, पर अभी बहुत सारे बैरियर कुछ तो पास किए हैं और कुछ और हमें पास करना है। तो देखते जाओ अभी क्या क्या परिस्थितियां आती है? अभी प्रकृति की परिस्थितियां आएगी, और प्रकृति के भी कितने हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। कभी पृथ्वी हिलेगी तो उसका अलग सिचुएशन होगा, हवा जोरदार हिलेगी उसका अलग सिचुएशन होगा, बारिश जोरदार आ गई उसका अलग सिचुएशन होगा, नहीं आई तो अलग सिचुएशन होगा, धरती हिलेगी भूकंप आएगा उसका अलग सिचुएशन होगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये सब परीक्षा ले रहे हैं, ये भी हमारे सामने परीक्षा के रूप में आएंगे। हमारा जो अंतकाल का पुरुषार्थ है उसके अंदर सब एक एक बार परीक्षा लेने के लिए आएंगे, देखेंगे ये मजबूत है कि नहीं है, ये हिल गया है कि अचल अडोल होकर के चल रहा है, एक रस बन करके चल रहा है। 5 विकार अपनी परीक्षा लेंगे, बहुत कुछ निकाला है लेकिन थोड़ा बहुत और बचा है, ऐसा ना हो कि उस अंश को आपने संभाल के रख लिया तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो वंश हो गया। तो अंश को भी नहीं संभालना है, अंश भी जला देना है, रावण का अंश भी जला देना है, अंश वंश सारा खत्म कर देना है। तो अनेक तरह की परीक्षाएं, बाबा कहते खुद के शरीर का भी खुद में मोह रहता है, खुद के शरीर को भी हम अपने मोह से पाल रहे थे, तो उससे भी हमें न्यारा बनना है। तब बाबा कहता है अपनी बुद्धि को ब्रह्म लोक में रमण कराओ है? तो हम सभी संपन्न बनेंगे, और लास्ट का पेपर, सबसे ज्यादा पेपर जो आता है वो शरीर का पेपर आता है, जो सबसे नजदीक है हमारे नजदीक रिलेटिव, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन उससे भी नजदीक क्या है? हमारा शरीर। तो ये शरीर का पेपर सबसे बड़ा पेपर है, ये लास्ट पेपर है। इस पेपर में हम कितने पास हो रहे थे, हमारी दादियों ने एकदम नस्तो मोहा बन करके पास होकर के बताया। दादी जान की हमारे सामने उदाहरण है, दादी प्रकाशमणि दादी हमारे सामने उदाहरण है, बड़े बड़े सीनियर भाई हमारे सामने उदाहरण है, रमेश भाई हमारे लिए उदाहरण है, जगदीश भाई हमारे लिए उदाहरण है, मम्मा हमारे लिए उदाहरण है, सबने आपने हिस्टोरी सुनी है उसकी, कैसी कैसी शारीरिक परीक्षाएं आई, लेकिन शारीरिक परीक्षा में सदा पास है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाता था कि ये बीमार ये है कि ये है, है इसको लाने वाला बीमार है, इसके चेहरे पर इतनी चमक है। तो योगियों के चेहरे तो ऐसे चमकते हैं कि डॉक्टर भी समझ ना पावे है कि बीमार आखिर है कौन। ये सारी परीक्षाएं दे करके पास विद ऑनर बनना है, ऐसा ना हो अंत समय इतनी सी बात कोई याद आ जाए और फेल हो जाए। कहानी पता है, एक व्यापारी का है ना, बहुत व्यापार का शौक था, जिंदगी भर व्यापार किया, माल आ रहा है माल जा रहा है, बड़ा व्यस्त सवेरे से लेके रात तक 18 घंटा, जैसे बाबा कहता 18 घंटा, 8 घंटा मुझे याद करो, सारा दिन मुझे याद करो, मैं तो वो सारा दिन व्यापार धंधे में लगा रहता था। करते करते उसका अंत समय आ गया है, जब अंत समय आया तो पड़ गया बिल्कुल लंबा होकर के। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये केवल थोड़े घंटे का मेहमान। पंडित जी को बुलाया गया कि भाई इनको थोड़ा सा गीता वीता सुनाओ। उसने कहा दादाजी राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, राम की जगह भी क्या निकलता था, लाभ लाभ लाभ, जिंदगी भर लाभ लाभ करते रहे, तो राम कहाँ से निकले अच्छी तरह से, शब्द भी ऊपर नीचे हो जाते बुढ़ापे में। अब वो कहते नहीं राम बोलो, बुला रहे मेरा बेटा कहाँ गया, तो सब यही है पिताजी मैं यही बैठा हूँ, हाथ जोड़ के कहा मैं यही बैठा हूँ, हाँ आप भगवान का नाम लो। बोले अच्छा वो दूसरा बेटा कहाँ गया, तो भी बोला कि हाँ मैं भी यही बैठा हूँ। फिर जब उसका एकदम अंत आ गया तो कहते अरे दुकान के ऊपर कौन बैठा है, तो अंत समय क्या आ गया उसको, दुकान याद आ गई। हमें भी अपने अंत समय छोटा सा बाल जितना संकल्प भी याद ना रहे, ब्रह्मलोक के निवासी बन जाए, संकल्पों की दुनिया से भी न्यारे और प्यारे बाप दादा के दिल तक तक्षरशी बन जाए। ओम शांति।